यादवा कुंज बिहारी गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी गोपी जना बल्लवा गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजनाय यशोदानंद ब्रज जन रंजनाय यशोदानंदन ब्रज जन रंजनाय यशोदानंदन ब्रज जन रंजनाय यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव राधा माधव राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Radha Giridhari Radhe. Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe. Jagannath Swami Nayana Patha Gami Nayana Patha Gami Bhava Tume. Jagannath Swami Jagannath Swami Nayana Patha Gami Nayana Patha Gami Bhava Tume. Jagannath Swami Nayana Patha Gami Nayana Patha Gami Bhava Tume. Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Prabhupad Jaya Prabhupad Prabhupad Jaya Prabhupad Jaya Srila Prabhupad Jaya Prabhupad लीला प्रभुपाद की सभी लोग हाथ जोड़ कर मेरे पास दोहराएं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकं चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम् वंदे अहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रविवार सत्संग में सारे भक्तों को स्वागत है। सूचना है कि कल शाम को, सोमवार शाम को, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, नहीं सुबह नहीं शाम को, हाँ कल शाम को परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपने मीरा रोड मंदिर में आने वाले हैं। सभी भक्तों को निवेदन है कि उनके मुखारविंद से कथा प्रवचन सुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित रहे गौर आरती के बाद, और सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी रहेगी। हाँ सुबह मैसेज आया था, फिर महाराज जी का शेड्यूल चेंज हुआ, इसीलिए मुझे फिर से बोलने के लिए अभी बोले। हाँ सुबह कल सुबह गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आने वाले थे, मगर उनका शेड्यूल चेंज हुआ, तो अभी फिर से मैसेज आया, इन्फॉर्मेशन आया कि शाम को आएंगे गुरु महाराज। हाँ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज शाम को आएंगे, तो सभी लोग शाम को गौर आरती के बाद यहाँ पर मंदिर में आएंगे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग एक ऐसे विषय का चर्चा करेंगे जो कि सभी लोग इससे परिचित हैं। आप लोग उस नोटिस बोर्ड में देखे रहेंगे को, आप तो सुने मृत्यु के बारे में, डेथ। तो आज हम लोगों ने मृत्यु के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। किसी के चेहरे में प्रसन्नता नहीं है क्या प्रभु जी, हम लोग प्रवचन सुनने के लिए आए, क्या अवशकुन बातें कर रहे हैं आप इधर बैठ के। ये डेथ और मृत्यु मृत्यु के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में बोलते हैं, तो सब लोग क्या बोलते हैं, ऐसे बातें नहीं बोलना चाहिए, मृत्यु के बारे में नहीं बोलना चाहिए, शुभ शुभ बोलना चाहिए, अशुभ बातें नहीं करना चाहिए, है ना। हम सब संसार में क्या करते हैं, ये जो निराट सत्य है, ये जो मृत्यु, बाकी कुछ भी झूठ हो सकता है, मगर मृत्यु कभी झूठ नहीं हो सकता है, मिथ्या नहीं हो सकता है, और हमेशा हम इसको अवॉइड करते हैं, टालते हैं इसके बारे में सुनने के लिए, इसके बारे में चर्चा करने के लिए, इसके बारे में सोचने के लिए, हम हमेशा टालते हैं। सही है कि नहीं, टालते हैं ना। कोई अगर मृत्यु के बारे में बोलता है तो हम ऐसे कहकर उसको टाल देते हैं कि शुभ शुभ बातें बोलना चाहिए, अशुभ बातें नहीं बोलना चाहिए, है कि नहीं, शुभ शुभ बोला करो। ये पूरे संसार में ऐसे ही है कि मृत्यु के बारे में कोई सुनना नहीं चाहता है या बोलना भी नहीं चाहता है, कई कारण हो सकता है, मगर इतना तो निश्चय है कि हर एक व्यक्ति इससे डरते हैं, है कि नहीं। सबसे बड़ा भय इस संसार का वो क्या है, मृत्यु, सबसे बड़ा भय, है ना। और सभी लोग इसको टालने के लिए प्रयास करते हैं, ऐसा ये एक ऐसा समय है जीवन का, हमारे पूरे जीवन का ये एक ही क्षण है जो सबसे अहमियत रखता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ द लाइफ, द डेथ, सबसे महत्वपूर्ण समय है एक क्षण, जिस क्षण हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट समय है, मगर हम उसके बारे में सोचते नहीं है ना। और अंत में हर एक व्यक्ति को इसका सामना करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। गीता में श्री भगवान कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, चार प्रकार के मिजरीज है, दुख है जीवन में, है ना। क्या क्या है वो चार प्रकार के दुख, संडे लव फिस्ट में आना, फोगट का 16 माला जप करना, चार नियमों को पालन करना, तीन हो गया। और कुछ? क्या चार प्रकार के दुख बताए भगवान ने? क्या क्या बताए? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये चार प्रकार के समस्या है, ये चार प्रकार के दुख है, जो कि इन चार प्रकार के दुखों से बचना अत्यंत कठिन है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जीव नहीं है, जो इस प्रकार चार दुखों से बच सकता हो, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों ना हो, और चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो या हमारे बॉम्बे का कोई भिखारी क्यों ना हो, है कि नहीं? और ये चार दुख है, भगवान कहते हैं। मृत्यु ठीक है, डर लगता है, बीमारी भी ठीक है, दुख देता है, बुढ़ापा भी दुख देता है, हम सबको पता है, मगर ये जन्म कैसे दुख देता है? क्योंकि हम सबको मालूम है, जैसे ही हमारे घर में एक नया बच्चा जन्म होता है, कुआं कुआं आवाज करता है, रोता है, तो वो रोने पर बाकी सभी लोग क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं, होते कि नहीं? खुश, मिठाइयां बांटते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं जन्म। मगर वो बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है। और इससे पहले था कहां पे? वहां वो कहां पे था वो बच्चा? एक छोटा सा घर में, है कि नहीं? लगभग 9 महीना 10 महीना मल मूत्र इत्यादि से भरा हुआ एक थैला उसके अंदर बंद करके रखा गया। छटपटा रहे हम लोग, ऐसी परिस्थिति में हम रहते हैं। और जैसे बाहर आते हैं सब लोग खुशियां मनाते हैं, वैसे हम रोते रहते हैं, बाकी सब खुशियां मनाते हैं, सोचते हैं ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत बड़ा सा सुख है, ऐसे विचार करते हैं। वो छोड़िए, बीमारी के बारे में सोचिए, हम सब बीमार गिरते हैं ना, बीमारी का एक्सपीरियंस सभी को है, ऐसा कोई है कभी बीमार नहीं गिरा हो? ऐसा कोई है नहीं, सभी बीमार गिरते हैं। और बीमारी का दुख सभी को एक्सपीरियंस हुआ है, सभी लोग इसका अनुभव किया है, बीमारी होने पर कितना दुख होता है अपने को अनुभव किए हैं। इसलिए हम कभी नहीं चाहते कि हमें बीमारी दोबारा आए, चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। बीमारी दोबारा आए, कोई कोई ईर्ष्या वैसे चाहते रहेंगे, है कि नहीं? कभी कभी स्कूल से छुट्टी मारने के लिए बच्चे चाहते रहेंगे, बुखार आएगा तो थोड़ा स्कूल से छुटकारा मिल सकता है। मगर ये बीमारी कभी भी हमको सुख नहीं देता है, हमेशा दुख देता है अपने को, इसका भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है। बुढ़ापा का भी अनुभव है कि नहीं? जो ओल्ड हो चुके, जो बूढ़े हो चुके हैं, उनको पूछने से हमको बता सकते हैं कि बुढ़ापे में क्या क्या सब कष्ट होता है ना? आंखों को ठीक से दिखता नहीं है, कानों को ठीक से सुनाई नहीं पड़ता है, बहुत सारे प्रकार की बीमारियां आ जाते हैं, कई सारे खाने की चीजों में रेस्ट्रिक्शंस है, ये नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते हैं, आलू नहीं खा सकते हैं, वात का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, क्या क्या सब है ना? सीढ़ियां चढ़ नहीं सकते हैं, चेयर के बिना बैठ नहीं सकते हैं, है ना? अपना खुद का पैरों का नाखून भी काट नहीं सकते हैं, कितने सारे सो मच प्रॉब्लम। इसके साथ साथ भी घर के बच्चे भगा लिए रहेंगे, बेटा बेटी बहू, है ना? वो एक मानसिक तनाव, इसका भी एक्सपीरियंस है। हो सकता है कुछ लोग हैं जो जवानी में मर जाते हैं, वो लोग बुढ़ापे का जो दुख है उसका अनुभव नहीं कर सकते, मगर बाकी सभी लोग बुढ़ापे का अनुभव करते हैं, और जो लोग बचे हुए हैं वो देखते भी हैं, है कि नहीं? तो बुढ़ापे का दुख का अनुभव हमने किया, देखा, सुना, और बर्थ का भी, मगर उस समय हमारा ज्ञान नहीं था जो दुख हमको हो रहा था जन्म के समय। और बीमारी का दुख तो हम सब सहन कर ही रहे हैं, अनुभव कर ही रहे हैं, फिर भी भगवान ने जो चार बताया, उन चारों में से जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इन चारों में से सबसे भयानक है वो क्या है? मृत्यु। हालांकि ये ऐसे चीज है जो जिसको किसी ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो। किसी ने मृत्यु का एक्सपीरियंस किया, अनुभव हुआ किसी को? जो मर गया सो गया,
उसका अनुभव हुआ रहेगा, मगर अभी हम लोग जितने हैं, जो मर गया तो वो कहां डरेगा, वो तो गया वहां से, मगर हम अभी डर रहे हैं। हमें बीमारी का अनुभव है, हमें जन्म का अनुभव अनकॉन्शियस स्टेट में हुआ है, जब चेतना मतलब उस पर उतना ज्ञान नहीं था, और बुढ़ापे का अनुभव भी है। मगर इन सभी चीजों से एक चीज से डरावनी है, वो क्या है, मृत्यु। मगर इस मृत्यु का अनुभव किसी ने नहीं किया है कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है मर गया फिर जिंदा हो गया, ऐसा नहीं, मगर ये सबसे डरावनी है। और इसीलिए इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहते, मृत्यु के बारे में, है ना। कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग सोचते हैं खाली जीवन भर हम सुख भोगेंगे, एंजॉय करेंगे, मृत्यु के बाद कौन देखा है क्या होता है क्या नहीं होता है, है ना। आप लोग सुने रहेंगे, एक एक ऋषि थे, नास्तिक ऋषि, ऋषियां भी नास्तिक भी हुआ करते थे। ऐसा नहीं केवल अभी के पढ़े लिखे लोग ही नास्तिक होते हैं, आधुनिक स्कूल कॉलेजों में पढ़े वो लोग नास्तिक है, ऐसा नहीं है। ये नास्तिकवाद भी सदियों से है, सृष्टि के प्रारंभ से ही है। एक चार्वक करके मुनि थे, सुने रहेंगे आप लोग, उनका क्या कथन है मालूम है, कि जब तक जिएंगे सुख में जिएंगे और लोन करके घी खाएंगे, क्या पता ये भस्मीभूत शरीर मृत्यु के बाद दोबारा थोड़े ना आने वाला है। ये चार्वक मुनि का स्टेटमेंट है, आप समझ पा रहे हैं, मैं वो श्लोक बताता हूं। चार्वक मुनि बोला करते थे, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत जावत जीवत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनः भवेत। ऋणम कृत्वा लोन करके उधार लेके, घृतम पीवेत ना घी खाना चाहिए, घी मीन्स सबसे डिलीशियस फूड है ना, सबसे ऊंचे कोटि का खाना घी को माना जाता है, उससे ऊंचे कोटि का खाना नहीं होता है वैसे, तो ऋण करके भी घी खाना चाहिए और सुख में जीना चाहिए, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत। और ये मृत्यु के बाद जला दे, जल जाता है शरीर, जला दिया जाता है और ये भस्मीभूत हो जाता है, राख बन जाता है, तो वो कहां से वापस आने वाला है, कुतः पुनरागमन भवेत, नहीं आने वाला है। ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी भी ऐसे जिए हुए हैं, जिनको नास्तिक बोला जाता है, नास्तिक फिलोसफी। ये लोग कोई शास्त्रों को नहीं मानते हैं, प्रामाणिक शास्त्रों को। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, खास करके यहाँ पे पुरुषोत्तम महाराज संसार में दो प्रकार के लोगों के बारे में वर्णन करते हैं, ध्यान से सुनिए हम उसमें से कौन से कैटेगरी में आते हैं। पहला, वन ग्रुप इज वेरी कंसर्न अबाउट डेथ एंड वेरी मच अफ्राइड ऑफ इट ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। द अदर ग्रुप इज सो मच एनग्रॉस्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन दैट दे कैन नॉट बियर टू थिंक अबाउट डेथ। दो प्रकार के लोग हैं संसार में, एक ग्रुप है जो लोग क्या करते हैं, ये मृत्यु को बहुत डरते हैं, है ना, क्यों डरते हैं मालूम है, ज्ञान ना होने के कारण। क्या हम लोग नहीं डरते हैं, हम लोग नहीं डरते हैं मृत्यु से, डरते हैं, क्यों डरते हैं, क्योंकि ज्ञान ना होने के वजह से, लैक ऑफ नॉलेज। दूसरे प्रकार के ग्रुप है वो लोग इतने सेंस ग्रेटिफिकेशन में, इतने इंद्रियों भोग में लगे हुए रहते हैं कि वो मृत्यु के बारे में भूल जाना चाहते, याद करना ही नहीं चाहते। अगर कभी कभी हम प्रचार में, हमको सभी लोगों को यह अनुभव होगा, अगर किसी को बोलेंगे मंदिर चलो है ना और जपा करो प्रवचन सुनो, तो कुछ अरे अभी टाइम थोड़े ना है, अभी तो एंजॉय करने का टाइम है, जब बुढ़ापा आएगा तब देखा जाएगा, है कि नहीं, जब बुढ़ापा आएगा तब देखा जाएगा। और ऐसे लोग क्या करते हैं, उस मृत्यु के बारे में भूल जाते हैं। ये दोनों के लिए एक ही निराट सत्य है, वो है डेथ, कि सभी लोग मरने ही वाले हैं, मगर कुछ लोग डरते हैं, बहुत बुरी तरीके से डरते हैं, और कुछ लोग है उसको भूल जाना चाहते हैं। कौन भूल जाना चाहता है, जो सेंस जो इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं वो भूल जाना चाहते हैं, और कुछ लोग ज्ञान न होने के कारण वो लोग डरते रहते हैं मृत्यु से। ये दो प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया। तो असलियत में ये मृत्यु क्या है जिसके लिए डरते हैं, जिसको याद नहीं करना चाहते हैं, ये है क्या मृत्यु? आप लोगों में से कोई बताइए, एक एक सेंटेंस में बोलिए, मृत्यु क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेथ? मृत्यु का अर्थ क्या है? कौन बताएंगे? आपने बताओ। हाँ, पावर का, पावर शून्य हो जाता है या चेतना शून्य हो जाता है, प्रभु जी बोले। और कोई बताइए मृत्यु क्या है? क्या है? अंतिम सत्य है। और क्या है मृत्यु? ओ लॉन्ग स्लीप, बहुत अच्छा। क्या है? एक ही सेंटेंस में अगर इसका जवाब चाहिए कि आत्मा का देहांतरण प्रक्रिया को मृत्यु कहा जाता है, आत्मा का देहांतरण प्रक्रिया को मृत्यु कहा जाता है। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। धीर जो ज्ञानी है न मुह्यते, वो कभी दुखी नहीं होता है, क्योंकि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये मृत्यु क्या है? जिस प्रकार से एक बच्चा बचपना से यौवन तक को जाता है ना, फिर यौवन अवस्था से वृद्धावस्था को जाता है, तथा वैसे ही देहांतर प्राप्तिर शरीर के छोड़ने के बाद उसी को मृत्यु कहा जाता है। यह है मृत्यु। अब समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? ये भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु का, अगर मृत्यु क्या है उसको एक ही सेंटेंस में जाने तो उसका जवाब यही है कि आत्मा की देहांतरण प्रक्रिया को मृत्यु कहा जाता है। डेथ मीन्स चेंजिंग ऑफ बॉडी, शरीर का बदलना। जैसे हम लोग अपने कपड़े बदलते हैं, खैर उस श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे, देही नो अस्मिन यथा देह। जैसे हम एक 6 साल के एक बच्चे को देखेंगे और फिर से हम 15 सालों बाद उसको मिलेंगे, क्या उसका 6 साल का शरीर रहेगा? उसके पास रहेगा नहीं। और 6 महीने में उसका जो शरीर था वो अभी है नहीं है, तो वो 6 महीने का शरीर कहां गया? कहां गया वो शरीर? मर गया। और जैसे वृद्ध हो जाता है उसके बाद वो अपना तस्वीर देखता रहता है, मैं कितना जवान था, कितना सुंदर था, काले काले बाल थे मेरे। दोबारा मिलेगा वो सब उसको? गोदरेज हेड ड्राइव तय कर सकता है, नो प्रॉब्लम, मगर वो जवान शरीर उसको दोबारा नहीं मिल सकता। यही मृत्यु है। हम समझ नहीं पा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में श्लोक में बतलाते हैं, हम सब इस भौतिक शरीर में हर क्षण मरते हैं, हर क्षण हमारा मृत्यु होता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार हर 6 महीने में व्यक्ति का शरीर बदलता रहता है, और हर एक क्षण में हमारे शरीर की कोशिकाएं, द सेल्स, वो मरते हैं और दूसरे दूसरे कोशिकाएं जन्म होते रहते हैं, ये विज्ञान कहता है। इसका अर्थ यह कि हम हर क्षण मर रहे हैं। हम बच्चे थे और अभी जवान हो गए, हम रो रहे हैं, हम बच्चे, हम क्यों जवान हो गए करके, और जब जवान से बूढ़े हो गए तभी रो रहे हैं क्यों बूढ़ा हो गए करके, तब फिर वो बूढ़ा शरीर व्यक्ति छोड़ के दूसरे नया शरीर में जा रहा है तभी क्यों हम रोएं? समझ पा रहे मेरी बातों को? तो ये ज्ञान है। तो कृष्ण का कहना है, अगर जो व्यक्ति बुद्धिमान है, कौन से ज्ञान से? ये गीता के ज्ञान से, वो कभी भी इस प्रकार के मृत्यु से वो भयभीत नहीं होता है या दुखी नहीं होता है। यह है मृत्यु। और कैसे ये हम लोग शरीर बदलते हैं, जैसे हम अपना कपड़ा बदलते हैं। प्रतिदिन गंदा कपड़ा चेंज करके हम नया कपड़ा पहनते हैं कि नहीं, पहनते हैं ना। ठीक वैसे ही जैसे ही शरीर बूढ़ा हो जाता है, उस शरीर को छोड़ के हम दूसरा नया शरीर को प्राप्त करते हैं, तो नया कपड़ा पहनने में तो हम दुखी नहीं होते हैं, दुखी होते हैं नहीं और खुश होते हैं ना। तो ठीक वैसे जब मरेंगे तो नया शरीर मिलेगा, तो अब दुखी होने की क्या आवश्यकता है। आप लोग सब सोचते रहेंगे प्रभु जी बोलना बहुत आसान है ना। दो प्रकार की चीजें, एक ज्ञान और विज्ञान। केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, साक्षात्कार होना चाहिए। हम लोग हरे कृष्ण में जहन होते हैं, ये सबसे पहला ज्ञान हमें यही मिलता है कि आत्मा का ज्ञान है कि नहीं। हम जितने बैठे हम सबको मालूम है कि हम शरीर नहीं आत्मा है करके, मगर हम जीते कैसे हैं, शरीर जैसा ही है कि नहीं। कोई थोड़ा बोलेगा तो गुस्सा करते हैं, कोई सम्मान नहीं देगा तो दुखी होते हैं, है ना। और बहुत सारे कार्य जो शरीर के स्तर पर ही करते हैं, क्योंकि आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है। ज्ञान तो मिल गया, तो ये ज्ञान के साथ साथ जब भी हम उस आत्मा के स्तर पे जीने लगेंगे, तभी जाके हम इस प्रकार के जो दुख है उससे निवृत्त हो सकते हैं, और ये जो भय है उससे परे हो सकते हैं, मृत्यु के भय से। ये शास्त्रों का उद्देश्य है। वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। गीता में कहते हैं कृष्ण, जिस प्रकार से हम लोग अपने शरीर में प्रतिदिन कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलता रहता है। ठीक वैसे उसी को मृत्यु कहा जाता है, और कुछ नहीं। मृत्यु मतलब समझ में आया, मृत्यु क्या है समझ में आया। अभी ये मृत्यु एक ऐसा चीज है, ये अवसंभावी है, अर्थात ऐसे संसार में कोई नहीं है जो कि इससे बचता हो। ये चार चीज है, ये भौतिक संसार में प्रॉब्लम्स कितने हैं, बहुत सारे, मगर सारे प्रॉब्लम्स में भी सात मेन प्रॉब्लम्स है जो हमेशा हमको सताते रहते हैं। वो क्या क्या है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अधिभौतिक, अधिआत्मिक और अधिदैविक क्लेश। ऐसे करके चार तीन सात कष्ट है जो हमको हमेशा कंटिन्यूसली मिलता रहता है, सात प्रकार के कष्ट। मगर हम अगर सोचेंगे, हमें कोई पूछेगा कि आपका प्रॉब्लम क्या था, हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। जैसे कि मुझे कोई पूछेगा प्रभु जी आपका प्रॉब्लम क्या है, मैं बोलूंगा 5 सालों से इस्कॉन में हूं, इतना खा रहा हूं, मोटा नहीं हो रहा हूं, ये मेरा प्रॉब्लम है कि नहीं। हर कोई मोटा व्यक्ति को जाके पूछेगा आपका प्रॉब्लम क्या है, तो वो डॉक्टर के पास जाता रहेगा कि मुझे पतला होना है ना। तो और किसी को पूछेंगे तो बोलेगा कि मुझे धनना है, पैसा नहीं। और किसी को पूछेंगे तो बोलेगा पैसा ही मेरा प्रॉब्लम है, इतने पैसे है कि मैं वो दूसरे दूसरे सीए वगैरह को ढूंढते हैं, पैसा कहां छुपाऊं मैं, ये उनका प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ये सारा रियल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सब समस्याएं बदलते रहते हैं। जैसे कहावत मैंने सुना था, वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। एक व्यक्ति का खाना दूसरे व्यक्ति के लिए जहर है, समझ पा रहे हैं। एक उदाहरण देते हैं, आप लोग सुने रहेंगे, बारिश का मौसम में आप एक झोपड़ी में जाइए और उनको पूछिए कैसे हैं आप, तो क्या बताएगा वो, अपना दुख भर दास्तान सुनाएगा, है ना। बारिश हो रहा है, पानी अंदर गिर रहा है, बच्चे भीग जा रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है। वही टाइम पे आप जाके एक छाता कंपनी के मालिक से पूछिए, और सेठ जी कैसे चल रहा है, क्या बताएगा वो, भगवान का हाल ऐसे बारिश होता है कि नहीं। तो ये बारिश तो झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के लिए जहर है, मगर ये छाता कंपनी के मालिक के लिए खाना। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम कितना दुखी होते हैं, है ना। मगर गैरेज वाला सोचा रहेगा भगवान 2-3 एक्सीडेंट होते रहे, व्यक्ति जिंदा रहे मेरे को पेमेंट करने लायक, और मेरे गैरेज के बाजू में होते रहना चाहिए एक्सीडेंट, है कि नहीं। बीमारी मतलब हम कितना दुखी होते हैं, मगर बीमार नहीं रहेंगे तो डॉक्टर लोग कैसे जिएंगे। इतना पैसा खर्चा करके लाखों रुपए डॉक्टर पड़े, वो बस वो क्या वो गिद्ध देखने जैसे देखते रहते हैं कैसे पेशेंट आएंगे। ये सभी को मालूम है आपने, है ना। ये सब रियल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये हमारा समस्या नहीं है एक्चुअली। हम सोच लेते हैं कि ये हमारा समस्या है, एक्चुअली समस्या तो यह है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि और अधिभौतिक अध्यात्मिक अधिदैविक क्लेश है, ये जिन समस्याओं से कोई भी व्यक्ति कभी भी बच नहीं सकता। कोई मोटा हो गया प्रॉब्लम है, किसी को पतला होना है ऐसे भी प्रॉब्लम है, मगर मृत्यु ऐसा है कि मोटा बूढ़ा बच्चा स्त्री पुरुष अमेरिका का और इंडिया का कोई भी क्यों ना, उसको सबको मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। मगर सभी लोग कौन से क्लासेस ज्यादा जाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जिए, मगर एक्चुअली मेनली हमको सीखना चाहिए कि कैसे मरे। जो व्यक्ति आर्ट ऑफ डाइंग सीख जाता है वो आर्ट ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली उसका हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक बच्चे को साल के एंड में उसको एग्जाम देना है कि नहीं, तो उसके दिमाग में क्या रहेगा, मुझे साल के अंत में एग्जाम देना है, तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा, तो साल भर उसको प्रिपेरेशन में ही रहना पड़ेगा, समझ पा रहे। तो अगर हमको मृत्यु कैसा होना चाहिए, मृत्यु के समय में क्या करना चाहिए, मृत्यु क्या है, इस चीज को अगर हम जान लेते हैं तो हमारा पूरा जीवन हम उसी हिसाब से जीने लग जाएंगे। ये आर्ट ऑफ लिविंग सीखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आर्ट ऑफ लिविंग सीखेंगे, कृष्ण ने तो बता दिया दुखाड़े मोसास्वतम, ये तो दुखों का घर ही है, यहां पे तो सुख मिलने वाला है नहीं, और उसमें सुदर्शन चक्र ये चक्र वो चक्र का ध्यान लगा के थोड़े ना कुछ हमको सुख मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए बेस्ट प्रोसेस ये है जो अपने शास्त्र कहते हैं प्रामाणिक शास्त्र, कि पूरे आध्यात्मिक जीवन या एक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि उसको सीखना चाहिए कि जो मृत्यु का अंतिम समय है लास्ट मोमेंट वो कैसे पार करे, उसके लिए पूरा जीवन उसको प्रिपेयर करना चाहिए, ये हम लोग को जानना चाहिए। और सभी लोगों का प्रयास वही होना चाहिए। तो ये मृत्यु होता कैसा है ये भी जानना जरूरी है ना। अभी इतना तो जान लिया हम लोग कि मृत्यु मतलब शरीर बदलना, शरीर बदलना मतलब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को जाता है, उसको मृत्यु कहा जाता है। तो थोड़ा सा नॉलेज तो अपने को होना चाहिए, ये होता कैसा है ये मृत्यु। हमारा शरीर दो प्रकार के हैं, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। कितने शरीर है अपना, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। आत्मा के दो कवरिंग माने जाते हैं, आत्मा के ऊपर दो कवरिंग माने जाते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। ये स्थूल शरीर किसको कहते हैं मालूम है, हम जिसको देख पाते हैं और छू पाते हैं उसको स्थूल शरीर कहते हैं, समझ में आपको, जिसको हम देख पाते हैं और छू पाते हैं वो है स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, और जिसे हम देख नहीं पाते हैं और छू नहीं पाएंगे भी उसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। ये स्थूल शरीर पांच चीजों से बनता है, क्या क्या वो चीजें है, घी शक्कर हनी और क्या, घी से शक्कर से मद से, किससे बनता है, और दो चीज क्या है, ये जो हमारा स्थूल शरीर है कितने अच्छे अच्छे चीजों से बनता है ना, घी, कौन बताएगा, पंचभूतों से हमारा स्थूल शरीर बनता है। क्या क्या है वो पंचभूत, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, ठीक है, भूमि राप अनल वायु खंग, भूमि राप अनल वायु खंग, ये पंचभूतों से लेके इन पंचभूतों को लेके हमारे ये ग्रॉस बॉडी यानी स्थूल शरीर बनता है। और एक सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और अहंकार से लेके बनता है, मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार, ये तीन चीजों से सूक्ष्म शरीर बनता है। आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर रहता है और उसके ऊपर स्थूल शरीर। ये स्थूल शरीर मतलब ये जो शरीर हम जिसको देख पाते हैं रोज सुबह उठ के आईना के पास जाके अपना वेशभूषा बदलते हैं, ये हमारा स्थूल शरीर है जो पंचभूतों से बना हुआ है। मृत्यु मतलब ये स्थूल शरीर छोड़ के दूसरे स्थूल शरीर में जाना, वो है मृत्यु। और केवल आत्मा चेंज नहीं होता है, आत्मा के साथ साथ सूक्ष्म शरीर और परमात्मा वे भी जाते हैं आत्मा के साथ साथ, है ना। एक शरीर में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा, परमात्मा, ये चार चीज रहते हैं। मृत्यु मतलब केवल स्थूल शरीर छूट जाएगा, ये सूक्ष्म शरीर, आत्मा और परमात्मा ये तीनों मिलके इकट्ठा दूसरे शरीर में जाके घुस जाते हैं, ये मृत्यु है। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। और अपना मन, बुद्धि, अहंकार हमारे इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाता है। इसीलिए हम इस जीवन में जो जो कुछ किए हैं, जो जो कुछ सुने हैं, देखे हैं, वो सब कभी वहां पे रिलाइव होता है, याद आ जाता है कभी कभी, और नेचर भी हमारा वहां पे जाता है, प्रकृति अपने साथ साथ, इसको कहते हैं मृत्यु। कभी कभी व्यक्ति को दूसरे जीवन के बारे में याद आ जाता है और कभी कभी व्यक्ति को दूसरे जीवन के बारे में याद नहीं आता है। ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए क्योंकि आप सबको मरना है, समझ पा रहे हैं ना, सोना नहीं है, हम सबको मरना है, इसलिए ये टॉपिक सुनना चाहिए क्योंकि मरते समय करेंगे क्या हम, समझ पाए मृत्यु क्या है। असलियत में टेक्निकली देखा जाए तो आत्मा का देहांतरण नहीं, सूक्ष्म शरीर का देहांतरण को मृत्यु कहा जाएगा, अगर एकदम से टू द पॉइंट देखा जाए तो, क्योंकि आत्मा तो सूक्ष्म शरीर के अंदर रहता है और सूक्ष्म शरीर के साथ ही दूसरे शरीर में जाता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर का देहांतरण प्रक्रिया को ही मृत्यु कहा जाएगा देखा जाए तो। ये मृत्यु है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ एक शरीर से निकल जाता है मगर उसके लिए दूसरा शरीर बना हुआ नहीं रहता है, तब भी वो घूमता रहता है बाहर, उसको कहते हैं भूत, द भूत रिटर्न, है ना, उसको भूत कहते हैं। समझता है भूत क्या है? भूत कोई एकदम से वो नहीं है, जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की जय। भूत वो है, भूत मतलब उस व्यक्ति का स्थूल शरीर छूट चुका है और उसके साथ सूक्ष्म शरीर है मगर उसको दूसरा स्थूल शरीर अभी तक मिला नहीं है, इसलिए वो इस संसार में भटक रहा है, इस भूपृष्ठ में, उसको कहते हैं भूत। और क्यों भटकता है? उसके मन में बहुत सारे इच्छाएं हैं। हाँ, उससे पहले हमको ये तीन भी जानना चाहिए, मन, बुद्धि, अहंकार, क्या क्या है ये। मन एक ऐसा, ये तीनों में उतना कुछ खास अंतर नहीं है, किसी को अगर पूछेंगे तो वो अंतर नहीं बता पाएंगे मन और बुद्धि और अहंकार का, एकदम से सूक्ष्म अंतर है, वो काम करने का जो तरीका है उसमें अंतर है ये तीनों का। मन क्या करता है? इच्छा करता है, मांग करता है कि नहीं, है ना, इच्छा करता है और मांग करता है, ये है मन। बुद्धि क्या करता है मालूम है? वो विचार करता है, सही है या, मन सही है या गलत विचार नहीं करता है, वहां चलेंगे नहीं, वहां नहीं जाऊंगा, क्यों पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं देख रहे वहां पर जाना अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, बस उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो मन का काम है, वो ऐसे बोलेगा हा? चलो संडे ऑफिस में जाएंगे, नहीं पिछली बार गया था आज नहीं, क्यों, ऐसे ही मन नहीं कर रहा है। बुद्धि वो सोचेगा अरे जाना चाहिए, इधर रह के मैं समय बर्बाद करूंगा, जाऊंगा तो थोड़ा बहुत गीता के बारे में सुनूंगा, प्रसाद तो मिलेगा कम से कम, है ना, फोकट का खाना तो मिलता है। तो ये जो विचार करने का शक्ति है वो बुद्धि, वो जो विचार करता है सही और गलत का वो बुद्धि करता है, और डायरेक्ट जो इच्छा करता है वो है मन। और ये अहंकार क्या है, एक सेंटेंस में कौन जवाब देंगे अहंकार क्या है? नहीं, एक 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 सेंटेंस में उसका उत्तर होना चाहिए, अहंकार क्या है? अहंकार, हम सभी लोग ये शब्द को यूज करते हैं ना, अहंकार ये है, अहंकार हो गया बोलते हैं ना ऐसे सब, तो क्या है वो अहंकार? बुद्धि भ्रष्ट, नहीं, ईगो, हाँ वो ईगो, ईगो मीन्स अहंकार, अहंकार मीन्स ईगो, फॉल्स ईगो। अहंकार क्या है उसका जवाब अगर एक ही सेंटेंस में दे क्या है? हाँ? नहीं, वो तो एग्जाम्पल हो गया, नहीं, अहंकार का एक ही लाइन में अगर जवाब दें वो है परिचय, अपना परिचय, अपना परिचय, आइडेंटिटी, वो है अहंकार। ये जानना चाहिए हमको। हम बार बार तो बोलते हैं अहंकार अहंकार मिथ्या अहंकार, ये हम बहुत यूज करते हैं, मगर वो है क्या अहंकार? अहंकार मतलब अपना परिचय। तब उदाहरण के तौर पे कहेंगे मैं और मेरा, ये अहंकार है, इस ये मेरा परिचय है। मैं क्या है? परिचय है ना। तो ये अहंकार दो प्रकार का है, एक है मिथ्या अहंकार और एक है सही अहंकार। एक है फॉल्स ईगो और एक है ट्रू ईगो, ईगो और फॉल्स ईगो है ना, दो प्रकार है, मिथ्या अहंकार और अहंकार। हम जो खाली अहंकार का शब्द यूज करते हैं वहां पे अहंकार नहीं, मिथ्या अहंकार शब्द प्रयोग करना चाहिए। तो अहंकार का अर्थ क्या है? परिचय है ना, अपना आइडेंटिटी, परिचय। तो अपना परिचय क्या है? मैं कौन हूं? शास्त्र स्वरूप दास। नहीं, ये मिथ्या अहंकार है। मैं एक ब्रह्मचारी हूं, ये क्या है? ये सही अहंकार है ना। नहीं, ये सभी अपना शरीर का परिचय मात्र है, और ये शरीर का परिचय ही मिथ्या अहंकार माना जाता है। मैं सो एंड सो हूं, वो मिथ्या अहंकार है। मैं राम या रोहित, या मैं सेठ हूं, या मैं बॉस हूं, मैं किसी का पति हूं, मैं किसी का पत्नी हूं, बच्चा हूं, ब्रह्मचारी हूं, ब्राह्मण हूं, ये सब कुछ मिथ्या अहंकार है। ये सब कुछ शरीर से रिलेटेड है, ये हम नहीं है। असली अहंकार मतलब जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये सही अहंकार है। समझ पा रहे? ये अहंकार है। मन हमेशा इच्छा करता है। मन में और एक क्वालिटी भी है, मन लाइक ए स्टोरेज लोकेशन, मतलब बहुत सारे चीजों को वो रखेगा अपने पास। आप लोग जानते हैं पेन ड्राइव होता है, मेमोरी कार्ड होता है मोबाइल में, है ना, उसमें क्या होता है? छोटा सा एक चिप होता है, हम उसमें बहुत सारे कीर्तन प्रवचन हम उसमें स्टोर करके रखते हैं ना, उसको स्टोरेज लोकेशन कहते हैं। कंप्यूटर अगर नॉलेज होगा वो जान सकते हैं, कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव की आवश्यकता होता है ना, हार्ड डिस्क की आवश्यकता होता है, चाहे वो चिप ही क्यों ना हो, वो हार्ड ड्राइव होता है। हार्ड ड्राइव मीन्स वो चीज जिसको छू पाएगा और देख पाएंगे, उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। मगर अपना सिस्टम भगवान ने ऐसा बनाया, उसमें सॉफ्टवेयर के अंदर ही सब कुछ स्टोर कर सकते हैं, ये लोचा है। मन लाइक ए सॉफ्टवेयर, क्योंकि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को हम केवल देख पाएंगे, उसको काम कर पाएंगे, छू नहीं पाएंगे, वैसे मन है अपना। मन को हम लोग देख नहीं पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, मगर जो कुछ भी डेटा होता है ना, मन स्टोर कर लेता अपने पास, वो स्टोरेज लोकेशन है मन। और वो क्या करता है? ये शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाता है, तो कभी कभी वहां पे भी वो याद आ जाते हैं, रिसेंट डॉक्यूमेंट में रहता है वो सब। कभी कभी हम सोचते प्रभु जी मैंने ऐसे काम तो कभी किया नहीं, मुझे ऐसे याद आया, या कभी कभी ऐसा मन करता है, कभी ऐसे सपना आता है, ऐसा तो कभी मैंने किया ही नहीं, मुझे याद ही नहीं है। कभी ये जन्म में नहीं तो किसी जन्म में किए रहेंगे, तो वो अभी ऐसे पॉपअप जैसे आ जाता है, वो दिखाई पड़ता है अपने को। कंप्यूटर में भी ऐसा होता है, कभी कुछ काम किया रहेगा तो अचानक कभी अपने दिखाई पड़ेगा, कभी डिलीट मार दिया हुआ फाइल भी वो बाद में कभी मिल जाता है, रिसाइकल बिन में रहता हो ऐसा। तो ये मन है, और ये क्या करता है? आत्मा के साथ मन बुद्धि अहंकार परमात्मा के साथ मिलकर दूसरे शरीर में जाते हैं, वो है मृत्यु। कभी कभी वो मन में जो दूसरे जन्म के बातें याद आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं, और जब भी दूसरा शरीर नहीं मिलता है उसको भूत कहते हैं, और वो भटकता रहता है, अतृप्त आत्मा। अतृप्त आत्मा मतलब उसके मन में बहुत सारे मांग है, पूरा नहीं हुआ, अभी वो शरीर ढूंढ रहा है, कोई एक शरीर मिल जाए उसके अंदर घुसूंगा और मैं जो चाहता हूं वो सब काम करूंगा। और किसका शरीर पकड़ता है? जो हरे कृष्ण जप नहीं करता है, ज्यादातर तमोगुण में रहेंगे है ना, सोते रहेंगे है ना, ऐसे शरीर को तुरंत पकड़ लेगा वो, उसके शरीर में घुसेगा, शरीर में घुसकर उठपटांग काम करेगा, वो है भूत। भूत और कुछ नहीं है। समझ में आया मृत्यु? अभी डेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ लाइफ, ये मृत्यु जो है अपना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है कि नहीं? सोचिए क्यों महत्वपूर्ण है ये। मैं एक उदाहरण देके बताता हूं। अपना हाथ एक्सीडेंट में चला गया, हम दुखी होते हैं कि नहीं, रोते हैं कि नहीं, है ना? हाथ चला गया तो कितना दुखी होंगे, कितना रोएंगे। एक हाथ चला गया, आंख चला गया तो कितना रोएंगे, है ना? रोएंगे कि नहीं। मान लीजिए पैर अपना कट गया, कितना दुखेंगे। आप सोचिए एक क्षण के लिए कि अपना पैर कट जाता है कुछ एक्सीडेंट के कारण, क्या हाल होगा अपना। और कभी कभी अपना रिलेटिव्स मर जाते हैं, बेटा मर गया, क्या हालत होता है। पत्नी मर गई, सोचो कैसे लगेगा अपने को, है ना? और एक प्रकार का दुख है। मान लीजिए अपने पास पैसा है, हम उसको लगाएं किसमें, बिजनेस में, और कुछ अप एंड डाउन होता है ना कुछ मार्केट में, तभी क्या हुआ अपना लॉस हो गया, तब कैसा होता है हाथ में, होता है कि नहीं। ये डेथ एक ऐसा समय है, एक ही झटके में पैसा, गाड़ी, बंगला, रिलेटिव, पत्नी, बच्चे, हाथ, पैर, घर, सब कुछ निकल जाएगा, हाथ से छूट जाएगा, है कि नहीं? एक ही झटके में सब कुछ छूट जाएगा, तो ये दर्दनाक है कि नहीं, है कि नहीं? एक हाथ निकलता है तो रोते हैं, एक रिलेटिव चला जाता है तो इतने दुखी होते हैं, मगर हम मर जाएंगे तो एक ही झटके में सब कुछ चला जाता है, छूट जाता है अपने से, जितने समय है, संपत्ति है, हाँ, सब कुछ, प्रेस्टीज है, सब चला जाएगा। वो है मृत्यु। और इतना भयानक भी क्यों है मालूम है? गरुड़ पुराण में बताया गया है ये मृत्यु के समय व्यक्ति को 40,000 बिच्छू एक साथ काटने पर जितना कष्ट होता है ना, उतना कष्ट होता है, ऐसा करके गरुड़ पुराण में बताया गया है। 40,000 बिच्छू, है ना? हाँ, 40,000 साइमल्टेनियसली एक साथ काटेंगे, कितना का? हाँ, आप लोग को बिच्छू काटा है क्या किसी को? नहीं काटा ना। हम अभी श्रीरंगम गए थे भगवान रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए, 4 बजे, हाँ 4 बजे हम लोग लाइन में है उधर करने के लिए, और अंधेरा था, लाइट नहीं था। हमारा जूहू से भी एक ग्रुप गया था भक्तों का, वो लाइन में खड़ी हुई एक माता जी को एक बिच्छू काट लिया। बिचारी माता जी अभी दर्शन करेगी या इसको मारेगी, बहुत दर्द कर रहा था, चल भी नहीं पा रही थी। और उनका बेटा बहुत डर गया था, पूछा प्रभु जी बिच्छू काट लिया, कुछ सांप जैसा जहर फैलेगा क्या, मर जाएगा क्या? मतलब कुछ नहीं होगा, 24 आवर्स उसका पॉइजन रहेगा और दर्द करेगा, 24 आवर्स के बाद वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, इतना दर्द होता है। और सोचिए एक बिच्छू काटने पर ये हाल है। हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, फ्लैट में काटा नहीं, इसलिए हम लोग के चेहरे में एक्सप्रेशन नहीं मिलता है कि बिच्छू मतलब क्या होता है, जब काटा है तब पता लगता है। और 40,000 एक साथ काटते तो कितना दर्द होगा, वो है मृत्यु। तो ये एकदम से महत्वपूर्ण समय क्यों है मालूम है? क्योंकि हम मृत्यु के बाद जो दूसरे शरीर में जाएंगे ना, वो हमारे इस मृत्यु के ऊपर निर्भर करता है, वो कौन सा शरीर हमको मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं? मृत्यु के बाद हमें कौन सा शरीर मिलेगा, ये डिसीजन, ये रिजल्ट किसके ऊपर निर्भर करता है? अभी के मृत्यु के ऊपर निर्भर करता है। पास होंगे तो 11th में जाएंगे, नहीं तो 10th स्टैंडर्ड में लटके हुए रहेंगे। समझ पा रहे ना? बच्चा एग्जाम दिया, पास होगा तो 11th में जाएगा, नहीं पास हुआ तो, ठीक वैसे ही मृत्यु के समय यह निर्भर करता है कि हम कौन से शरीर में प्रवेश करेंगे। इसीलिए मृत्यु जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण समय है हमारे लिए। इस चीज को लोग समझते नहीं है, इसीलिए उसके प्रति नेग्लेक्ट करते हैं, नहीं तो डरते हैं, भोग करना चाहते हैं। इसीलिए गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, यम यम व्यापि स्मरण भाव त्यजन्ते ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो जिस प्रकार की भावना के साथ अपना शरीर को छोड़ता है और दूसरे उसी प्रकार का शरीर को प्राप्त करता है। मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है करके अगर शरीर छोड़ेगा तो भालू बनेगा, है कि नहीं? भालू वो शरीर बहुत अच्छा सोने के लिए। मांस खाना कितना अच्छा लगता है और दांत नहीं है, खा नहीं पा रहा हूं, उस आशा से मर जाएगा तो दूसरे जन्म में बहुत सुंदर सा बाघ बन जाएगा, टाइगर। मांस खाते रहना जितना खाना है। मृत्यु के समय जिस प्रकार का भावना हमारे मन में रहेगा, मृत्यु के बाद वैसा ही शरीर हमको प्राप्त होगा। बेस्ट एग्जाम्पल है भरत जी का, ना? सबसे सुंदर उदाहरण भरत महाराज जी का। भरत महाराज श्री भगवान के एक उच्च कोटि के भक्त हैं, महान राजा भी थे, इतना सारा संपत्ति, ऐश्वर्य, सुंदर पत्नी, बच्चा, सब कुछ को त्याग करके उन्होंने जंगल में किसके लिए गए थे मालूम है? वो भगवान की भक्ति करने के लिए, है ना? सब कुछ छोड़ के चले गए। बहुत सुंदर साधना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, को फूल कंदमूल फल इत्यादि ला के भगवान को अफर करके खा रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक दिन ऐसा हुआ, उन्होंने स्नान इत्यादि करके गंडकी नदी के किनारे, गंडकी नदी मालूम है कौन सा? कौन सा? नेपाल में है। और कौन है गंडकी नदी? तुलसी महारानी है, मालूम है कि नहीं सबको? गंडकी नदी स्वयं तुलसी महारानी है। तुलसी महारानी का शरीर गंडकी नदी बन गया और तुलसी महारानी का बाल ये पौधा बन गया। वो गंडकी नदी के किनारे भरत महाराज तब बैठ के अपना जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। उस समय उन्होंने देखा कि गंडकी नदी में पानी पीने के लिए एक हिरण आया, डियर। पानी पीते समय क्या हुआ, अचानक एक बाघ का आवाज आया गर्जन करने का, और इतना जोरदार आवाज था नजदीकी कहीं से आया, तो हिरण डर गया, डर के वो छलांग लगा के भागने लगा। आप सबको मालूम है हिरण तो तेज भागता है, है ना? और जैसे छलांग लगाया, बिचारी हिरण जो है वो गर्भवती थी, तो उनके गर्भ से जो बच्चा है हिरण का वो वहीं पे पानी के अंदर ही जन्म हो गया। और अपना जीवन रक्षा के कारण वो तुरंत नदी के बाहर चली गई, एक गुफा में जाकर वो शरीर त्याग दी, और ये बच्चा पानी में गिर गया। और बैठकर भरत महाराज देख रहे थे क्या करना चाहिए। उस समय वही किए भरत महाराज, तुरंत गए बच्चे को उठाए, पानी से बाहर लेके आए, उसका देखभाल करने लगे। देखभाल करते 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 इतने आसक्त हो गए उस हिरण के प्रति कि भगवान का भक्ति, साधना, उनके रिचुअल्स, सब कुछ उनका छूटने लगा। इधर जप करते रहेंगे या भगवान की सेवा करते रहेंगे, तुरंत याद आ जाएगा कहां चला तो नहीं गया ये हिरण। तुरंत जाके देखते थे, वहां बाधा प्राप्त हुआ भगवान की सेवा में। और जहां पे जंगल में फूल और फलों के लिए जाया करते थे, हिरण को साथ में लिया करते थे, उसको गोद में लेके खेलते थे, उनको कभी कभी चुम्मा देते थे। इस प्रकार से बहुत उस हिरण के प्रति वो एकदम से आसक्त हो गए थे, उनकी कोमल कोमल शरीर के प्रति, उनके सुंदर चेहरा के प्रति, आंखों के प्रति वो बहुत आसक्त हो गए थे। हर घड़ी उस हिरण के बारे में सोचते थे। क्या सोचते थे? ओहो, ये हिरण का कोई नहीं है, माँ मर गई, बेचारे कोई भी रिलेटिव्स नहीं है उनके पास, मैं ही इसका माँ हूँ, मैं ही इसका बाप हूँ, है ना? बूढ़े लोग ऐसा सोचते हैं, बच्चे घर से निकाल देते हैं, अंत में एक ही कुत्ता मिलता है, वो कुत्ते को लेके घूमते रहेंगे। बेटा तो नहीं देखा, बहू तो नहीं देखा, ये कुत्ता बहुत अच्छा है, एक बिस्किट देता हूँ तो मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। देखा, बहुत सारे लोग कुत्ते को लेके जाते रहेंगे। तो ऐसे है ये भरत महाराज, सो मच, है ना, बहुत आसक्त हो गए हिरण के प्रति, हर समय हिरण के बारे में, हिरण के बारे में, हिरण के बारे में सोचने लगे। सोचो, उनका इतना संपत्ति छोड़ दिए, सुंदर सा पत्नी को छोड़ दिए, अपना बच्चों को छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ के वो भक्ति करने के लिए जंगल में आए थे, मगर जंगल में आके किए क्या, एक हिरण के प्रति, एक पशु के प्रति वो आसक्त हो गए। अंत में हुआ क्या, एक दिन वो उठ के देखे कि वो हिरण है नहीं आश्रम में, कहीं निकल गई थी, और उनको ढूंढने लगे, सब कुछ छोड़ दिए, भजन साधन जपा कीर्तन यज्ञ सब, और हिरण के पीछे, हिरण के लिए घूमते 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 और अपना शरीर को छोड़े। शरीर छोड़ते समय उनके मन में वो हिरण का जो चेहरा है, हिरण का जो स्वरूप है, वही वो विचार कर रहे थे, और जैसे शरीर छूटा और दूसरा हिरण बन गए। मगर भगवान की एक देन था उनके प्रति आशीर्वाद कि पिछले जन्म की घटनाओं को उन्होंने भूले नहीं थे। जब हिरण बन गए तब उन्होंने सोचा, ओ मैं कितना बड़ा गलती किया, कितना बड़ा गलती किया मैंने, सब कुछ छोड़ के आके एक पशु के प्रति आसक्त हुआ और मुझे जाना कहाँ था मुक्ति के मार्ग में, अभी मुझे हिरण बनना पड़ा। देखिए ये हमारे लिए बहुत शिक्षणीय बातें हैं। तब उन्होंने क्या किया, फिर अपने आप को सुधारने के लिए साधु संतों के आश्रम के पास में रहने लगे। हरा भरा घास नहीं खाते थे, सूखा घास खाते थे, क्या मालूम हरा भरा घास के प्रति आसक्त हो जाएगा करके फिर वो अपने आप को सुधारने के। बेस्ट एग्जाम्पल में ये बहुत सुंदर उदाहरण है हमारे लिए कि मृत्यु के समय हम जिस प्रकार की भावनाओं के साथ हम शरीर छोड़ेंगे उसी प्रकार का शरीर अपने को प्राप्त होगा, ये निश्चय है। तो फिर आप सोचेंगे ये अच्छी बात है प्रभु जी, मर अभी तो यार कुछ भी नहीं है अपने पास, फकीर फांगड़ा हूं, मरते समय सोच के मरूंगा, बिरला के घर में जन्म होगा, मर्सिडीज गाड़ी होना चाहिए और एसी का घर होना चाहिए और ऐसा बंगलो होना चाहिए, जन्म होगा फिर वैसे चाहे आप कुछ भी हो, ये भौतिक संसार है, वहां पे ये सात दुख तो अपने को सताएगा ही सताएगा। हम लोग मर्सिडीज गाड़ी देखते हैं मगर मर्सिडीज गाड़ी के अंदर बैठने वाला कितना बीमार है, कितना कष्ट में, वो देख नहीं रहे। एक बार राधेश्याम को एक उदाहरण बता रहे थे, एक व्यक्ति है और डिवोट, तो उन्होंने एक स्त्री को देखा तो बहुत सुंदर था स्त्री, तो उनको उनसे शादी करना था, तो एकदम से उनको अप्रोच किए, उनको विवाह करना है ये न के न प्रकार है ना, अंततः गत्वा वो स्त्री को कन्विंस करके, और बहुत ऊंचे खानदान की बातें हैं, वो उनसे विवाह हुआ, बहुत सुंदर सा स्त्री थी, फिर उन्होंने शादी कर लिया। वो अपने आप को बहुत धन्य मानते थे कि इतना सुंदर स्त्री मेरे पास है और किसी के पास नहीं, मैं सबको दिखा सकता हूं। शादी के बाद पता लगा कि उस स्त्री के मुख से बहुत दुर्गंध आ रहा था और बोले कि ये क्या, बोलते कि कुछ तो बीमारी है, ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर दिखाने के लिए प्रयास किए, सभी डॉक्टर दिखा डाले, अंत में रिजल्ट यही आया कि ये बीमारी कभी भी दूर होने वाला है नहीं, कोई इलाज नहीं उसका। तो वो मार्केट में जाते समय बाकी सब लोग सोचते रहेंगे कितना सुंदर स्त्री मार लिया इसने, मगर वो बेचारा सोचता रहेगा मैं कहां। ये संसार का रियलिटी, वो बाहर का जाक जाकम मत देखिए, वो जो असलियत है उसको देखना चाहिए। तो इस संसार में हम कहीं क्यों ना रहे, ये दुखों से भरा हुआ है ना, मगर पूछेंगे कैसे हो, उसको पूछोगे कैसे हो पत्नी के साथ अभी गृहस्थ जीवन, आई एम फाइन। सबसे बड़ा झूठ, कैसे हो, मैं ठीक हूं धन्यवाद, ये सबसे बड़ा झूठ है। नजदीक से पूछेंगे क्या भाई कैसे चला, क्या यार सब ठीक है बट चालू हो जाएगा फिर, बोला बोला बोला। इसीलिए ये मृत्यु के समय हमारा चेतना कैसा होना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरणम उक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्य संशयः। जो व्यक्ति अंतकाल में मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है, मृत्यु के बाद शरीर छोड़ने के बाद मेरे धाम को प्राप्त करता है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अभी बात छेड़ा, मृत्यु के समय किसका स्मरण करना चाहिए, किसके लिए, कि हम बाद में कहां जा पाएंगे तो वहां पे क्या फायदा होगा, कभी बूढ़े नहीं होंगे, दोबारा जन्म नहीं होंगे, दोबारा मरेंगे नहीं, बीमारी भी नहीं, वैकुंठ विदधा कुंठ, जहां पे कुंठ मतलब दुख नहीं है उसको वैकुंठ कहा जाता है। न तत् भासयते सूर्य न शशांक न पादक जत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम। सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चांद की आवश्यकता नहीं है, जो एक बार जाता है वापस नहीं आता है, वो मेरा धाम है, वहां पे तुम आ सकते हो, मगर कैसे, अंत समय में मेरा स्मरण करना पड़ेगा तुमको। अंत समय में क्या करना पड़ेगा, भगवान की स्मरण करना पड़ेगा, तभी जाके हम वहां पे जा पाएंगे। तो अच्छी बात है, बेस्ट उदाहरण कौन सा है इसके लिए, अंत समय पे भगवान का स्मरण किया, अजामिल है ना, ये बहुत बड़ा बहुत अच्छा उदाहरण है। अजामिल ने, बेचारा अजामिल ब्राह्मण थे मगर किसी एक वेश्या के चक्कर में आके जिंदगी भर बहुत सारा पाप किए। ऐसा कोई पाप नहीं है जो कि उन्होंने किया नहीं हो, है कि नहीं। दस दस बच्चे थे, उसमें से एक छोटा सा बच्चा था, बहुत प्यारा सा, नन्ना सा, उसका नाम था नारायण। और वो भी ऐसा, किसी एक साधु संत ने उनके घर में गए थे भिक्षा मांगने के लिए, उन्होंने तभी वो छोटा बच्चा था, उनका नाम दे दिया था नारायण, ये बच्चे का नाम रखो। और वो हमेशा छोटा बच्चा माँ बाप को बहुत प्यारे होते हैं, वो हमेशा नारायण नारायण करके अपने बच्चे के प्रति बहुत आसक्त था। मृत्यु के समय यमदूत आए, है कि नहीं, बहुत सुंदर सुंदर, है ना, धोती कुर्ता पहनकर, है ना, अच्छा सा ब्यूटी पार्लर जाके हेयर डाई करा के आए थे यमदूत लोग। उनका बाल कैसा था, वायर जैसा लंबा लंबा, है ना, कैसे लाल कलर का बाल। हम लोग अभी सोचते हैं ब्यूटी पार्लर जाके लाल करा देते हैं तो स्टाइल है, वो स्टाइल नहीं है, वो राक्षस लोगों का बाल ऐसे होते हैं, यमदूत लोगों का बाल ऐसा होता है। उतना की कथा में देखिए, उतना का बाल का वर्णन आएगा, क्योंकि धीरे धीरे राक्षस प्रवृत्ति बढ़ता है ना, तो वैसा हम सोचते हैं कि ये फैशन है, मतलब फैशन नहीं है, वो राक्षस प्रवृत्ति बढ़ रहा है इसलिए इस चीजों के प्रति। और भी कुछ ऐसे बच्चे आप देखेंगे, वो बालों को ऐसे कंघी भी नहीं करेंगे, वो खड़ा खड़ा रखेंगे कुछ ऑयल लगा के। बकवास है, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति बढ़ रहा है। एकदम भयंकर दिखने वाले यमदूत जब आए, ये अजामिल डर गए और डर के मारे अपने बच्चे को बुलाया, नारायण नारायण। तो तुरंत क्या हुआ, वहां पे भगवान विष्णु के दूत आए, यमदूतों के साथ फाइटिंग हुआ और यमदूतों को भगा दिए, बोले कि यहाँ पे आप प्रवेश नहीं कर सकते, चले गए। ये बेस्ट एग्जाम्पल है। तो फिर हम लोग सोचेंगे अच्छी बात है, अपने बच्चे का नाम भी रख देंगे हम लोग। वैसे हम लोग में है बच्चों नाम, तो कृष्णा राम गोविंद कुछ ना कुछ रखते हैं। सबसे बेस्ट आइडिया, मरते समय याद रखेंगे, मरते समय बच्चे को बुलाएंगे, है ना। वो कथा आप लोग सुने रहेंगे, मजा कथा। वो एक व्यक्ति प्रवचन में यही सुना, अजामिल की कथा सात दिन सुन के वो डिसाइड किया, सही आइडिया है। उसके चार बेटे थे, उन चारों का नाम जाके बदल दिया, पहले रखा रहेगा चिंटू मिंटू किंटू कुछ, बाद में उसने बदल दिया, अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव, ऐसा करके चार नाम रख दिया भगवान का। सोचा मरते समय इन चारों को बुला लूंगा, उसने तो एक को बुलाया था। तब पूरा सब हो गया, बूढ़ा हो गया, अभी बिस्तर पे लेटा हुआ है, मरने ही वाला है। वो कैसे, व्यापारी था, घर के बाहर दुकान था और बच्चे दुकान में काम कर रहे हैं। अभी उसको पता लगा अभी मेरा मृत्यु होने वाला है, बस यमदूत दिख रहे हैं। तब उसने पूरा आंख बंद करके बुलाया, अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव शंकर सह। तो चारों बेटे जो दुकान छोड़ के आ गए, देखा बदमाश तुम लोग दुकान छोड़ के आ गए, उधर कोई चोरी कर लेगा दुकान का, यही सिखाया क्या तुमको, करके चिल्लाने लगा बच्चा। उसी समय उसका शरीर से आत्मा छूट गया, आत्मा से शरीर छूट गया, मर गया। हो चालाकी करेगा सोचा। जब तक हम पूरे जीवन भर अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक मृत्यु के समय हमको कभी भी भगवान कृष्ण की स्मरण नहीं हो सकता है। और वो भी अभ्यास करने के बाद भी भगवान हमारे मन में आएंगे या हम स्मरण कर पाएंगे करके नक्की नहीं कर सकते, क्योंकि वो अध्यक्षज है श्री कृष्ण, वो हमारे भौतिक इंद्रियों से परे हैं। और मन, हम स्मरण किससे करते हैं, मन से, मन भौतिक है, तो कैसे हमारा भौतिक मन श्री कृष्ण का स्मरण कर सकता है करके हम विश्वास कर सकते हैं, ये भी एक डाउट है। और एक व्यक्ति है, उड़ा हो गया उसका बेटा, और बैठ बैठ के उनके बेटे को परेशान कर रहा था, ऐसे व्यापार करना चाहिए वैसे व्यापार करना। उसका बेटा कंटाल गया, वो बोला कि एक साधु उनके गांव में आए थे भिक्षा मांगने के लिए, उनको कुछ पैसा दिया, बोला मेरे बेटे मेरे पिताजी को लेके जाइए, थोड़ा तीर्थ भ्रमण करा के लाइए, थोड़ा भक्त भक्त बनेगा, बूढ़ा हो गया अभी। तो साधु महात्मा उनको लेके सभी तीर्थों में गए, वो जाके भक्त क्या बनेंगे, भगवान का क्या दर्शन करेंगे, पुजारी अगर दक्षिणा मांगेगा तो वो उसको 5 रुपया देंगे और 4 रुपया 50 पैसा वापस लेंगे उससे, और हिसाब लगाएंगे कितना पैसा इसका कमाई होता रहेगा पुजारी का। हाँ, फिर वही प्रसाद के लिए इतना पैसा क्यों, इतना पैसा रिक्शा में क्यों, वही सब दिमाग लगाएंगे। कभी कभी हम लोग भी यात्रा में जाते यही करते रहते हैं, पूरे यात्रा प्रभु जी क्या प्रवचन देते हैं, भगवान दर्शन का महिमा क्या छोड़ देते हैं, हमको अच्छा से रहने के लिए नहीं मिला, प्रसाद ठीक से नहीं किया, इन लोगों ने पूछा तो लिया अपने से मगर व्यवस्था सही से नहीं किया, यही करते रहेंगे जाए। हो बेचारा बूढ़ा यही करते रहा। वो साधु महात्मा परेशान हो गए, बोले कि किसको लेके आ गया, वापस लेके आया, बोले कि अरे प्रभु आपके पिताजी को मैं सुधार नहीं सकता हूँ। बेटा सोचा कि घर में रखूंगा तो फिर से दिमाग खाएगा, और पैसा दिया उनको, बोले कि प्लीज इस बार और एक बार ट्राई कीजिए। वो सोचा कि अभी दक्षिण भारत हो गया, उत्तर भारत लेके जाता हूँ, उत्तर भारत लेके गए। घूम फिर के वो मनकनिका घाट गए, बनारस में है ना, किधर है मनकनिका घाट, वाराणसी, हाँ उधर गए मनकनिका घाट। वो उधर कैसे, पूरा मनकनिका घाट मीन्स वो श्मशान है ना, उधर सभी डेड बॉडीज जलाते हैं, और इतने डेड बॉडीज से इतने लोगों को जलाते हैं मृत शरीरों को कि लाइन लगा हुआ रहेगा, कोई रो रहा है, कोई लकड़ी ला रहा है, कोई जला हुआ आधा जला हुआ फेंका हुआ रहेगा, उधर पड़ा हुआ रहेगा, बहुत भयानक स्थिति है। और वैसे जब भी मनुष्य श्मशान में जाते हैं तभी तो एक प्रकार का वैराग्य आता ही है, श्मशान वैराग्य जिसको कहते हैं, संसार में कुछ नहीं, देखो इतना कमाया, बच्चे भी है, पत्नी भी, क्या लेके गया साथ में, है ना। और अच्छा ये एक इसको कहते हैं श्मशान वैराग्य, घर में वापस आके फिर सब कुछ चालू एज इट इज, श्मशान में जाएंगे तो वैराग्य आएगा। और एक आता है प्रवचन वैराग्य, प्रवचन सुनते रहेंगे तो प्रभु जी सही बात बता रहे हैं, ऐसे नहीं करना, जैसे प्रसाद प्रसाद खा के घर में जाएंगे फिर चालू हो जाएंगे, है ना। ये हम सबके साथ घटित होता है ना, ऐसा पेंडुलम जैसा, भोग त्याग ऐसे पेंडुलम जैसा होता रहता है। तो वहां लेके गए, इतना डेड बॉडी जल रहा है, देख के वो टेंशन में आ गया बूढ़ा, बहुत बैठ गया वहां पर दुखी होके। तो ये वो जो पंडित जी है, वो साधु है, लेके गए थे, ओ आप क्या सोच रहे हैं, तो एकदम दुखी हो गया, रोने लगा, यस यस मैं यही चाहता था, इसी समय का मुझे इंतजार था, आपको क्या अनुभव हो रहा है बताइए, आप जीवन के बारे में क्या सीखे, कुछ तो बताइए एक्सपीरियंस, कुछ चेंजेस हुआ आपके अंदर। बोला कि महाराज मेरा जीवन बर्बाद हो गया करके रोने लगा, हाँ मैं यही चाहता था, यही चेंजेस चाहता था मैं तुम्हारे अंदर, बताइए और क्या अनुभव हो रहा है, मेरा जीवन बर्बाद हो गया महाराज, मुझे क्या मालूम था कि मैं जीवन भर कपड़े का बिजनेस करते करते मैं जीवन बर्बाद किया, मुझे क्या मालूम था यहाँ पे लकड़ी का इतना अच्छा खासा बिजनेस है करके। बता हम अगर सोचेंगे अंत समय में स्मरण कर लेंगे होने वाला, इसीलिए महाराज प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, कौमारम आसरते प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह, कुमार अवस्था से ही हमें ये भागवत धर्म को अपनाना चाहिए, हमको अपने बच्चों को कुमार अवस्था से ही सिखाना चाहिए। एक प्रभु जी से मिला था, प्रभु जी आपका बेटा मंदिर नहीं आता है, हम तो बुढ़ापे में आए हैं प्रभु जी, बच्चे को अभी घूम रहे हैं खेल रहे हैं, खेलने दो ना, बाद में जब बुद्धि आएगा आ जाएंगे, ऐसे नहीं विचार रखना चाहिए, ये भक्तों का विचार नहीं है। हर घड़ी बच्चा पाप कर सकता है, हर घड़ी वो पाप के एक्टिविटीज में वो हो सकता है, और जो करेगा वैसे आदत, एक बार कुछ अगर बुरी आदत लग गया तो फिर उससे निकालना बहुत कठिन है, हम सबका अनुभव है, हम सभी का कर्तव्य बनता है कि कुमार अवस्था से ही हमारे बच्चों को हम उन्हें सिखाएं जपा करना। मैं कभी किसी से भी सुना, बच्चों को अभी से प्रेस करके जपा नहीं कराना चाहिए, और क्या उनको प्रेस करके स्कूल भेजना चाहिए, जिस स्कूल को प्रभुपाद ने स्लॉटर हाउस करके बोला, नहीं हमको कराना चाहिए उनसे जपा, ये न तेन प्रकार उनको अभ्यास कराना चाहिए, 8 साल से बड़े बच्चों को एकादशी जरूर पालन करना चाहिए, सनातन गोस्वामी कहते हैं हरिभक्ति विलास में, है ना, 5 साल की उम्र से उनको जपा करना सिखाना चाहिए, उनका कीर्तन करना सिखाना चाहिए, हाँ उनका भक्ति के हरेक अंगों के बारे में बतलाना चाहिए, हाँ तभी जाके वो जीवन भर करते 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 अभ्यास करते करते मृत्यु के समय हो सके तो कृष्ण की कृपा होगा तो हम स्मरण कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला मन ये भौतिक है, और हम भौतिक मन के द्वारा श्री कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे करके हम कैसे बोल सकते हैं, वो तो अधोक्षज है, उसके लिए भी शंका है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमको उनकी सेवा करना चाहिए नम्रता पूर्वक, उनका जपा करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हमको जपा करना चाहिए। ये जपा करना भी श्री कृष्ण का सेवा है, इससे वे प्रसन्न होते हैं। और भी अनेकों सेवाएं अपने पास है श्री कृष्ण के लिए। श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन करके एक ऐसा पैकेज बना के दे दिया ना, किसी भी प्रकार का व्यक्ति इसमें आएगा वो लग जाएगा श्री कृष्ण की सेवा में, चाहे वो कितना बड़ा भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो और वो कितना बड़ा भी क्यों ना हो। वो गुरेशपू बोलते हैं ऐसा, वो श्री कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। ये श्री प्रभुपाद जी का मूवमेंट है। और एक बात है, ये मृत्यु दो प्रकार से अपने पास आता है। कितने प्रकार से? भक्तों के लिए एक प्रकार से मृत्यु आएगा, अभक्त के लिए एक प्रकार से मृत्यु आता है। अभक्त के लिए कैसा मृत्यु आता है मालूम है? भयानक। कोई अगर बोलेगा, यहां पे महाराज लिखते हैं कि अगर कोई बोलता है ओ मेरे पास टाइम नहीं है मंदिर जाने के लिए, जप करने के लिए, कथा भागवत सुनने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए, भगवान कहते हैं ओ डोंट वरी मैं आता हूं तुम्हारे पास, टेंशन मत लो। कब आएंगे मालूम है? मृत्यु के रूप में। वो भयानक रूप लेके आते हैं, कालोस्मि, मैं ही काल हूं भगवद गीता में कहते हैं। वो इतना भयंकर रूप से वो काल पुरुष वो आते हैं। इस मृत्यु से कोई नहीं बच सकता है। ऐसा कोई है आप लोग को याद है? ऐसा कोई व्यक्ति हो जो मृत्यु से बच गया हो? हाँ याद है, एक बार ऐसा हुआ। एक ऋषि थे, उनका नाम था शक्ति मुनि। उनका नाम क्या था? शक्ति मुनि। ये शक्ति मुनि कौन थे मालूम है? अपने व्यासदेव जी के ग्रैंड फादर थे, मतलब दादाजी। व्यासदेव जी पराशर मुनि के पुत्र, भगवान के साहित्यिक अवतार व्यासदेव जी, उनके दादाजी थे। उनका नाम था शक्ति मुनि। एक बार शक्ति मुनि आके व्यासदेव जी को बोले कि बेटा मुझे मरना नहीं है, डर लग रहा है मरने के लिए। शक्ति मुनि कहते हैं मुझे बहुत डर लगता है मरने के लिए, मैं मरना नहीं चाहता हूं, कुछ तो करो। व्यासदेव बोलते पागल हो गए दादाजी, मरने से कैसे बच सकते हो? क्योंकि कोई भी जातक से ही जन्म हो हुआ मतलब मृत्यु है। प्रभुपाद साथ में लिखते हैं जन्म को टेक्निकली अगर कोई बोलना चाहिए तो मृत्यु करके बोलना चाहिए, क्योंकि जन्म हो गया खत्म हो गया, अभी उसके साथ चालू क्या हो गया? मृत्यु। हर घड़ी वो मरेगा अभी, है कि नहीं? तो एंड में वो जब मरता है उस समय हम मृत्यु कहते हैं। जन्म मतलब मृत्यु ही है। हम लोग एकदम खुश होकर प्रफुल्लित नहीं होते, जैसे जन्म हुआ मृत्यु का भय लग गया उसके साथ। ऐसा नहीं बूढ़ा होने तक इंतजार करेगा, है ना? बुढ़ापे का बूढ़ा, बूढ़ा शब्द का अर्थ क्या है कौन बताएंगे? जो मृत्यु का जितना नजदीक है वो उतना बूढ़ा, वही है ना? ये जल्दी मर जाएंगे क्योंकि बूढ़े हो गए, यही सोचते हैं ना हम लोग। उसका रियल जो ये है उतना ही है कि जो मृत्यु का जितना नजदीक है वो उतना बूढ़ा है। अभी कौन मृत्यु का कितना नजदीक है कौन कैलकुलेट करेगा? हाँ, कौन कैलकुलेट कर सकता है? कौन कभी मरेगा? कोई बोल सकता है मैं कल तक जिंदा रहूंगा करके? कोई बोल सकता है? नहीं, कोई कभी भी टपक सकता है बॉम्बे भाषा में, कभी भी टपक सकता है। इसलिए हर एक व्यक्ति बूढ़ा है। वो इंग्लिश में जो पूछते हैं ना वो सही पूछते हैं, हाउ ओल्ड आर, तुम कितने बूढ़े हो, वो इंग्लिश में पूछते हैं। वो सही है पूछना, तुम कितने बूढ़े हो, हा? और हम लोग जवाब भी ऐसे ही देते हैं, 16 साल का बूढ़ा हूं मैं, है ना? 16 ईयर्स ओल्ड कहते हैं ना हम जवाब में इंग्लिश में, मतलब 16 साल का बूढ़ा हूं या बूढ़ी हूं। इसलिए कौन कब मरेगा कोई नहीं बोल सकता। इसलिए हमको ये जो जपा और साधना का प्रोसेस कंटिन्यू रखना चाहिए, ताकि हम तो समय में हमको स्मरण आए। और ये पैसा, घर, बिजनेस करते रहेंगे करते रहेंगे, अंत में मेरे बेटा का नाम तो रखा हो ना मैं होने वाला है ना? तो ये बेचारे शक्ति मुनि अपने ग्रैंड सन व्यासदेव जी को जाके बोले कि हे पुत्र मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता हूं, बहुत डर लगता है। व्यासदेव जी बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, जो जन्म होता है उसको मरना पड़ता है दादाजी। बोले को कुछ तो करो ना, मैं क्या करूं ना, आप सब कुछ कर सकते हो क्योंकि आप जो है भगवान के साहित्यिक अवतार हैं, आप भगवान के अवतार हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हो, प्लीज प्रयास करो ना, कहीं से कुछ कंसेशन मिल जाएगा, क्योंकि आपका तो ऊंचे लेवल में परिचय रहेगा ना, है ना? बोलते ना हम लोग पहचान रहेगा ऊंचे लेवल में। व्यासदेव जी बोल कम से कम यमराज जी को तो थोड़ा पूछ सकते आप। दादाजी बोले ठीक है, यमराज जी के पास गए अपने दादाजी को लेके, जाके बोले कि महाराज प्रणाम किए, स्तुति किए, ये मेरे दादाजी है शक्ति मुनि, उनको मरना नहीं है, बहुत डरते हैं मरने से, कुछ करो ना कि उनको मृत्यु न आए। यमराज बोले कि ठीक है, क्योंकि वो मृत्यु के बाद व्यक्ति मेरे पास आता है, प्रॉब्लम यह है कि मैं मृत्यु का कारण नहीं हूं, मैं उसके आत्मा को लेकर नहीं आता हूं, मैं यहां रहता हूं और मैं खाली वो डिसीजन लेता हूं कौन सा दंड देना चाहिए इसको करके, वो मेरे पास है, और जो लेके आने वाला है वो काल पुरुष, आप उनके पास जाइए ना, काल पुरुष के पास। तो ठीक है, काल पुरुष के पास जाऊंगा। तभी शक्ति मुनि क्या 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 बोले, महाराज आप भी चलिए ना यमराज जी को, क्योंकि उनके साथ आपका परिचय आता है, आपका रिकमेंडेशन लेटर मिलेगा तो कुछ काम निपट जाएगा। यमराज जी बोले कि व्यासदेव जी है भगवान का अवतार, चलो साथ में चले। अभी व्यासदेव, शक्ति मुनि और यमराज तीनों गए किसके पास, काल पुरुष के पास। काल पुरुष से जाके प्रणाम किए, उनकी स्तुति किए, काल पुरुष बोले कि क्या हेल्प करूं ना। व्यासदेव जी बोले कि हे पुरुष, हे महाकाल, कृपया मेरे जो दादाजी है उनको मृत्यु नहीं चाहिए, वो बहुत डरते हैं, तो कुछ ऐसा करो कि वो बच जाए। ओहो, वो ठीक है कि मैं जीवात्मा को ले लेता हूँ, मगर मेरे पास उसका हिसाब किताब नहीं रहता है, किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, सब कुछ उसके चित्रगुप्त के कंप्यूटर में रहेगा। हाँ, चित्रगुप्त को जाके मिलिए, चित्रगुप्त जी से। तो चित्रगुप्त से मिलना, तो चलो चलते हैं। तब व्यासदेव जी बोले कि आप भी थोड़ा साथ में चलिए ना, क्योंकि आपका संबंध उनके साथ है, यमराज जी आप दोनों मिलके बोलेंगे तो बेचारे चित्रगुप्त मना नहीं कर सकते हैं, काल पुरुष मना नहीं कर पाए, बड़े बड़े लोग हैं, चलो वो भी चल दिए। अभी यमराज, काल पुरुष और व्यासदेव तीनों मिलके शक्ति मुनि को लेके किसके पास गए, चित्रगुप्त के पास। सब रिकॉर्ड रहता है, वो सब लिखे हुए रहते हैं, पता नहीं अभी कंप्यूटर में फीड कर दिए रहेंगे, क्योंकि एकदम इतना एडवांस हो रहा है ना हम लोग का कंप्यूटर सिस्टम। तो चित्रगुप्त के पास जाके बोले सेम, चित्रगुप्त बोले कि क्या नाम बताया, शक्ति मुनि, एक मिनट में सर्च करके बताता हूँ। तो उन्होंने सर्च इंजन में डाला शक्ति मुनि, तब उन्होंने बोला ओहो इनका तो मृत्यु ही नहीं है। तो सब लोग खुश हो गए, क्या अच्छी बात है, कितना परेशान हुआ व्यासदेव जी खुश, यमराज जी खुश, काल पुरुष खुश, मृत्यु ही नहीं है, सब लोग खुश हो गए, एक दूसरे से बात किए। तब चित्रगुप्त बोले रुको ना, अब क्या हुआ, इनका मृत्यु नहीं है, तब तक, कब तक, जब तक शक्ति मुनि एक साथ व्यासदेव, यमराज और काल पुरुष को एक साथ नहीं मिलते तब तक जिंदा रहेंगे, एक साथ मिलेंगे तो मर जाएंगे, घूम के देखे तब तक शक्ति मुनि खत्म। वो बेचारे अगर ये आइडिया नहीं करते हैं कि मुझे मरना नहीं है, थोड़ा यमराज के पास चलो, तब तक वो जिंदा रहते। उन्होंने दिमाग लगाया कि मुझे मरना नहीं है, थोड़ा यमराज को बोलो, वो यमराज के पास, वहां से काल पुरुष के पास, वहां से तीनों इकट्ठा हुए के खत्म हो गया। उनका जीवन में ये लिखा था, इसलिए मृत्यु से कोई बच पाएगा ऐसा नहीं है, जात से ही ध्रुव मृत्यु, मगर वो अलग अलग रूप से आते हैं, भक्त के लिए अलग श्याम सुंदर के रूप में आके वो स्वागत करते हैं। ऐसे कई अपने अपने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में भी महाराज हुए हैं जो मृत्यु के समय इतना पेनफुल अवस्था में भी वो एकदम प्रसन्न चित्त होकर अपना शरीर को छोड़े, अलग अलग प्रकार के बीमारी में रहकर भी वो एकदम प्रसन्न हुआ करते थे। ऐसे कई सारे ग्लोरियस डेथ, ग्लोरियस डिपार्चर के बारे में इस किताब में लिखा हुआ। एक कुछ ऐसे उदाहरण बताता हूं, जो कृष्ण के भक्त होने के नाते काल को डरते नहीं है। सबसे बड़ा और अच्छा उदाहरण है ध्रुव महाराज, सुने ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज का जब समय हो गया उनको वापस जाना था, तभी भी काल आया था भयंकर रूप से। ध्रुव महाराज बस देखे, सिंपल सा, कोई फर्क नहीं, और उधर से एरोप्लेन भी आया, है कि नहीं, किंगफिशर कौन सा, वैकुंठ से। तो ध्रुव महाराज क्या किए, वो जो काल पुरुष है ना डेथ, उनके सर के ऊपर पैर रखे, चढ़ के विमान में चढ़ गए, चले गए वापस। यह है ध्रुव महाराज, ये काल भगवत भक्तों के सामने कोई मायने नहीं रखता है, मगर एक अभक्त के लिए ये बहुत भयंकर बन जाता है, बहुत भयंकर। उसको कपिल मुनि तीसरे स्कंद में बतलाते हैं कि मृत्यु कैसा होता है। उस समय बीमारी होता है और सांस ना लेना, वो जो एयर है वो वायु अंदर प्रेशर के कारण आंख बाहर आ जाते हैं कभी कभी, और कुछ बोल नहीं पाता है, कंठ ये हो जाता है, बाजू में रिश्तेदार बैठ के रोते रहते हैं, रिश्तेदारों को अपना इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं तभी व्यक्त नहीं कर पाता है, बाजू में यमदूत आके खड़े हो जाते हैं, उन लोगों उनके रूप देख के उनका मल मूत्र विसर्जन करता है व्यक्ति, इतना डर जाता है। और एक अभक्त के लिए इतना भयंकर रूप से मृत्यु आता है, मगर एक अभक्त के लिए बहुत सिंपल। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज क्या इस संसार को छोड़े, बस बोले एक बार बताएं, जनवरी का समय था, जनवरी महीने में महाराज बोले हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज बताए कि जो जेंटलमैन है उनको इस संसार में रहने लायक नहीं है, ये संसार जेंटलमैन रहने लायक नहीं है। एक जेंटलमैन क्या बोलते हैं हिंदी में, सभ्य व्यक्ति के रहने लायक नहीं है। गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि एक सभ्य व्यक्ति को इस संसार रहने लायक नहीं है, तो मैं भी चला जाऊंगा, महाराज बोलते हैं मैं भी चला। मगर पता नहीं गोपाल का क्या इच्छा है, उनका आराध्य देव थे गोपाल, उड़ीसा में अभी भी है, बोले पता नहीं गोपाल का क्या इच्छा है, मुझे गोपाल के पास जाना है। फिर वो जाते हैं अपने बिलोवर गोपाल जी का दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वापस आते हैं। प्रभुपाद जी का फेस्टिवल होता है भुवनेश्वर में, फेस्टिवल अटेंड करते हैं, उसके बाद वो मायापुर जाते हैं जीबीसी मीटिंग अटेंड करने के लिए। जीबीसी मीटिंग चलता रहता है, उस समय प्रभुपाद जी के दो शिष्य परमिशन लिए रिक्वेस्ट करके कि महाराज जी के साथ थोड़ा बात करना है, गौर गोविंद महाराज जी के साथ, तब उनको परमिशन मिला, अंदर गए, उनको पूछे ये प्रश्न पूछे कि महाराज कृपया हमें बताइए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में ज्यादा दिन क्यों रुके। तभी गौर गोविंद महाराज बताना चालू किए अपने आसन में बैठकर कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी क्यों रहने लगे। वो बतलाते 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 श्री कृष्ण की उन लीला तक गए, जगन्नाथ जी की वो लीला जो कृष्ण राधा रानी की विरह में रोते हैं, उनके आंख बड़े हो जाते हैं, मुंह फैल जाता है, हाथ एकदम से कछुए जैसे हो जाते हैं, और राधा भी कृष्ण के विरह में ऐसे पड़ी रहती है, वो विरह भाव तक गए। जब इस प्रकार के कृष्ण की राधा के विरह का वर्णन कर रहे थे, और जैसे ही राधा ने कृष्ण के आंखों को देखा और कृष्ण ने राधा रानी के आंखों को देखे, ये शब्द बोलने के बाद उनके आंखों से एकदम से आंसू बहने लगा, शरीर कांपने लगा और गला रुक गया महाराज जी का। और महाराज बोले कि मुझे माफ करिए, मैं आगे नहीं बोल पाऊंगा। और अंतिम इंस्ट्रक्शन दिए, दो बार बोले कीर्तन करके बोले और जाके अपने बेड में लेट गए। और भक्त लोग बहुत धीरे से कीर्तन चालू किए वहां पे, तब देखे उनका सांस चल रहा है, थोड़ी देर के बाद वो निस्तेज हो गए, खबर फैल गया चारों तरफ। और उससे पहले उनका मांग था कि मेरे गोपाल जीव मुझे चाहिए, तो गोपाल जीव के एक फोटो उनको दिए और हाथ में छाती के ऊपर लेके और लेट गए, बहुत प्रसन्न चेहरा एकदम और लेटे हुए। तब खबर फैला चारों तरफ। पुरुषोत्तम महाराज लिखते हैं कि मैं जब ये आके देखा तब बहुत सुंदर लेटे हुए थे, डॉक्टर्स आए थे, डॉक्टर देख के बोले कि अभी ये सर उठ चुके हैं। और जब भी मैंने देखा मुझे ऐसा लगा कि महाराज अभी भी है यहाँ पर। तब डॉक्टर लोगों ने बोले कि इनको हॉस्पिटल लेना चाहिए, मगर मैंने मना कर दिया। पुरुषोत्तम महाराज कहते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में लेके जाएंगे वो लोग बेकार को छाती के ऊपर ऐसे दबाएंगे, वो सोचेंगे हार्ट अटैक हुआ, ये वो करके परेशान करेंगे। मैं सोचा कि 15-20 मिनट के बाद मैं बताऊंगा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा श्रील महाराज श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश कर चुके थे। देखिए कितना सुंदर, श्री कृष्ण स्वयं आकर उनको एक्सेप्ट कर लिया। इस प्रकार का शरीर छोटा है भक्तों का। श्रील प्रभुपाद है ना, अंतिम क्षण तक उनके शिष्य लोगों ने माइक को ऐसा पकड़ते हैं उनके पास और भागवतों का एक एक शब्द ट्रांसलेट कर रहे हैं।
शरीर छोड़ते हैं। ये होता है भक्तों का शरीर छोड़ना, है ना। और भी उदाहरण, ध्रुव महाराज वो अपने शरीर के साथ वैकुंठ वापस गए, ऐसा कोई जा सकता है? कोई जा सकता है ऐसा? और एक उदाहरण है तुकाराम जी महाराज, है ना, वो भी ऐसा गया। तो सोचो कितने ऊंचे कोटि के भक्त हैं। ये भौतिक शरीर छोड़कर जाना चाहिए, मगर उन लोगों को भौतिक शरीर से कुछ लेना देना ही नहीं था, भौतिक शरीर के साथ ही वैकुंठ। इन सारे चीजों से हमको ये सीखना चाहिए कि हमें भी अभी से प्रिपेयर करना चाहिए हमारा अंतिम लक्ष्य के लिए। हम अगर अभी कुछ खो गया, अभी कोई चला गया, पैसे का क्या होगा, घर का क्या होगा, हाँ बिजनेस का क्या होगा, बच्चों का, ये सब सोचते सोचते ज्यादा इसमें एंटेंगल रहेंगे तो हम क्या होगा, हमारा डेस्टिनेशन मृत्यु के तुरंत, मृत्यु के समय यही सब याद आएंगे और उसके बाद उनका धन प्रोटेक्ट करने के लिए सांप बन जाएंगे, नहीं तो कुत्ता बन जाएंगे, हाँ नहीं तो दूसरा उसी के घर में जन्म हो जाएंगे, कुछ ना कुछ उत्पटंग, फिर इसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि में चक्कर काटते रहेंगे, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, ये चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। तो एक ही है, जन्म कर्म समय दिव्यम एवं योवेति तत्व त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म। जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य करके जान लेता है वो इस संसार में फिर से जन्म नहीं लेता, और फिर से जन्म नहीं लेता मतलब फिर से मृत्यु। मृत्यु से बचना मतलब ये नहीं कि अभी जो हम जन्म, अभी जो हमारे पास शरीर है उसको नहीं छूटेगा, नहीं, इस बार शरीर छूटेगा तो ऐसी जगह में जाना चाहिए जहां से फिर से ना आए हम लोग, जदगत्व न निवर्तन्ते तद धाम, उस धाम में हमको जाना चाहिए, ऐसा अपना टारगेट बनाना चाहिए, है ना। इसके लिए श्री प्रभुपाद बहुत सुंदर सा ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बना दिए, है ना। और बस जपो, कीर्तन करो, प्रसाद खाओ, इसको उनसे जुड़े हुए रहो और आप लोग भगवत धाम चले जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ऐसे बहुत सारे बातें हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की।
हरे